हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 203 फ्लैशबैक पाठ की कहानी जारी। सुनैना एक दिन कॉलेज से घर जाती हुई देखती है कि उसकी बहन नैना कमरे में बैठकर रो रही थी। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे बहुत देर से रो रही हों। उनका मेकअप और काजल फैला हुआ था। नैना सुनैना के आने पर ध्यान नहीं दे रही थी, पर सुनैना ने सब कुछ देख लिया। वह बहन के पास गई और उसका हाथ थामते हुए बोली, क्या हो आदी, आप तो इतनी स्ट्रांग हो, आपको देखकर मुझे भी ताकत मिलती है, लेकिन आज आप यूं रो रही हैं, जरूर कोई बड़ी बात है, बताइए ना मुझे। अरे सोनू, तू कब आई? कुछ नहीं हुआ, ये तो रोज का ही है, कौन सी नई बात है? नैना ने आंसुओं और काजल से लगे निशानों को पोंछते हुए कहा और सुनैना के सवाल को अनसुना करने लगी। हाँ, ये सब रोज का है, लेकिन रोज रोज आपकी आंखों में इस तरह आंसू नहीं देखने को मिलते, इसीलिए मैंने पूछा। रहने दे सोनू दी, ये नैना दी कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन मैं बताता हूँ। मम्मी ने आज नैना दी को बहुत डांटा है और जबरदस्ती उनका रिश्ता उस बूढ़े के साथ तय कर दिया है। वो मामा जी का दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? धर्म सिंह, हाँ शायद यही। नैना और सुनैना की बातचीत सुनकर उनका छोटा भाई अरुण कमरे के दरवाजे से अंदर आता है और सुनैना को पूरी बात बताता है। अरुण की बात सुनकर सुनैना की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, हद हो गई है अब तो, बस बहुत हो गया। ये तुम्हारी माँ मेरी दीदी का रिश्ता कैसे किसी के साथ भी तय कर सकती है? और दीदी, आपने मान कैसे लिया? उनसे सवाल करने की बजाय आप यहाँ बैठकर रो रही हैं। चलो मेरे साथ अभी। गुस्से में नैना का हाथ पकड़कर उसे कमरे के दरवाजे की ओर खींचते हुए सुनैना बोली, रहने दे सोनू, कोई फायदा नहीं है। और तुझे क्या लगता है, मैंने कुछ नहीं बोला होगा क्या? लेकिन तू तो जानती है, ये घर दुकान सब कुछ कर्ज में डूबा हुआ है, और पापा ने तो घर भी गिरवी रख दिया है, और घर का खर्च भी पता नहीं कैसे चलता है। नैना ने सारी समस्याएं गिनाते हुए कहा और कमरे से बाहर नहीं गई, बल्कि सुनैना को अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया। मम्मी तो बोलती है कि वो नानी के घर से जो पैसे लेकर आती है उसी से घर का खर्च चलता है, बाकी पापा तो कोई काम नहीं करते, दिन भर इधर उधर बैठे रहते हैं और जरा सी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर सबको बताते हैं। 15-16 साल का अरुण मासूमियत से वही सब कह देता है जो उसने दिनों से सुना था। आखिर उसकी माँ चिल्ला चिल्लाकर यही तो बोला करती थी घर में। अरुण की बात सुनकर नैना और सुनैना कुछ पल उसकी तरफ देखने लगीं। अरुण भी घर में रहता था, इसलिए घर का खराब माहौल उसे भी पता था। हाँ, लेकिन नैना दीदी तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हैं और मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ, हम लोग अपने खर्चे के लिए तो किसी से पैसे नहीं मांगते ना, तो फिर हमें ये सब क्यों सुनना पड़ता है दिन रात? अरुण की बात सुनकर सुनैना झल्ला गई। नैना उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, अरे सोनू, अरुण पर क्यों चिल्ला रही है, उसकी क्या गलती है इसमें? ये तो वही सब बोल रहा है जो इतने दिन से हम सबको सुनाया जा रहा है। अरे दी, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो बस, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि आगे का क्या प्लान है। अगर आप सामने से जाकर मना नहीं कर रही हो तो जरूर आपने कुछ और सोचा होगा। नैना सुनैना की तरफ देखते हुए पूछती है। सुनैना की आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है। वह उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और अरुण को भी वहाँ से जाने को कहती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उनसे बहला फुसला कर ये बातें पूछ ले। अरुण अपनी दोनों बड़ी बहनों की हर बात मानता था और उनसे बहुत प्यार करता था। जब से वह छोटा था उसकी दोनों बहनें उससे बहुत प्यार करती थीं। भले ही उसकी माँ हमेशा उन पर चिल्लाती थी, लेकिन वे दोनों उसका गुस्सा उस पर कभी नहीं निकालती थीं और उसके साथ हमेशा प्यार से पेश आती थीं। इसलिए उसके मन में भी अपनी दोनों बहनों के लिए भरपूर स्नेह और हमदर्दी थी। वह उन दोनों को इतनी सारी बातें सहते हुए देखता था। अरुण के जाने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके नैना अकेले में सुनैना को अपना सारा प्लान बताने लगी। एक मिनट, दूसरी तरफ आदित्य अपने घर में ना रहकर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज हॉस्टल में रहता था। खासकर अनय की वजह से वो हॉस्टल में आया था, लेकिन अब अनय के चले जाने के बाद आदित्य हॉस्टल में अकेला हो गया था। धीरे धीरे उसके कुछ और दोस्त बने, लेकिन अनय जैसा दोस्त कोई नहीं बन पाया। आदित्य को अनय की कमी खलती थी, साथ ही वह सुनैना के बारे में सब कुछ जानने में लगा रहता था, इसलिए उसे कभी कभी अपने घर जाना पड़ता था। अपने पिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके उसने एक साल में सुनैना के घर का पता लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसे सुनैना के घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। घर जाना तो दूर की बात, आज तक वह कॉलेज में भी सामने से बात नहीं कर पाया था। उसे प्रपोज करना तो बहुत दूर की बात थी। पता नहीं उसने मुझे कभी नोटिस किया भी होगा या नहीं, और वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी। आदित्य सुनैना के बारे में सोचते हुए खुद से सवाल करता रहता था, लेकिन उसे सामने जाकर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। क्रमशः